ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज हम श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय पांचवा और श्लोक संख्या 15 तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्यम् संसरन्तम् कुभार्यवत् तद्गतिः अबुधस्य इह किम् असत्कर्मभिः भवेत्। तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्य संसरन्तं कुभार्यवत् तद्वितीर्बुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्य संसरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिर्बुधस्येह किं स तत्कर्म विभवेत्। तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्यम् संसरन्तं कुभार्यवत् तद्वितीर्बुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। संग बुद्धि रूपी वेश्या की संगति से भ्रंशित हरी गई ऐश्वर्यम् स्वतंत्रता का ऐश्वर्य संतरंतम भौतिक जीवन की शैली बिताते हुए कुभार्यवत उस व्यक्ति की तरह जिसकी पत्नी दूषित है। तद्गति ही दूषित बुद्धि की हरकतें अबुदस्य न जानने वाले की यह इस जगत में किम असत कर्म भी भवेत् क्षणिक सकाम कर्मों के करने से क्या लाभ हो सकता है? अनुवाद तात्पर्य श्रीमद ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की नारद मुनि ने एक ऐसे मनुष्य की भी बात कही थी जो वेश्या का पति हरियश्वन इस प्रकार समझा, यदि कोई पुरुष किसी वेश्या पत्नी वेश्या का पति बनता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता खो देता है। इस तरह यदि जीव की बुद्धि दूषित है तो वह अपने भौतिकवादी जीवन को बढ़ा देता है, भौतिक प्रकृति से निराश होकर उसे बुद्धि की गतियों का अनुसरण करना पड़ता है जो सुख तथा दुख की विविध स्थितियों बतला करती है। यदि कोई ऐसी स्थितियों को सकाम कर्म करता है तो उससे क्या लाभ होगा? दूषित बुद्धि की उपमा वेश्या से दी गई है। जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाया है वह उस वेश्या के द्वारा नियंत्रित कहा जाता है, ऐसा कि भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में कहा गया है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। जो लोग वास्तव में गंभीर हैं वे एक प्रकार की बुद्धि द्वारा चालित होते हैं और वह है कृष्ण भावनामृत की बुद्धि। बहुशाखानाम हिरंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो उचित बुद्धि में स्थिर नहीं है वह जीवन के अनेक गुणों की खोज करता रहता है। इस तरह भौतिक कार्यों में लगा होने से वह प्रकृति के विभिन्न गुणों के संपर्क में आता है और तरह तरह के तथाकथित सुख तथा दुख पाता है। यदि कोई पुरुष ऐसे वेश्या का पति बनता है तो वह सुखी नहीं हो सकता। इसी तरह जो व्यक्ति भौतिक बुद्धि तथा भौतिक चेतना के आदेशों का पालन करता है वह कभी भी सुखी नहीं होगा। मनुष्य को सही ढंग से प्रकृति के कार्य को समझना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में 3 अध्याय के 27 श्लोक में कहा गया है कि प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारं विमूढात्मा कर्तारम् इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यद्यपि मनुष्य प्रकृति के आदेशों का पालन करता होता है किंतु वह प्रसन्नता पूर्वक अपने को प्रकृति का स्वामी या पति मानता है। उदाहरणार्थ विज्ञानी जन जन्मांतर भौतिक प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करते रहते हैं और उस परम पुरुष को समझने की परवाह नहीं करते हैं जिनके निर्देशानुसार इस भौतिक जगत की सारी वस्तु गतिशील है। भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने का प्रयास में वे नकली देवताओं की तरह हैं जो जनता में यह घोषित करते हैं कि एक दिन वैज्ञानिक प्रगति ईश्वर के तथा कथित नियंत्रण को रोकने में समर्थ हो जाएगी, किंतु वास्तव में जीव ईश्वर के विधानों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। वह दूषित बुद्धि विषयरूपी संगति करने तथा विविध भौतिक शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसा कि भगवद गीता के 13 अध्याय के 22 श्लोक में कहा गया है कि पुरुषः प्रकृति स्थोपि भुंक्ति प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मशु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति है के कारण है। इस तरह जो उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। यदि कोई व्यक्ति क्षणिक सकाम कर्मों में पूरी तरह लग जाता है तो इस असली समस्या को हल नहीं कर सकता जो उसे क्या लाभ है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शनाकर चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादां सजना ललिता श्री विशाखांताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तत्संग भ्रंशितश्वर्य संसरंतम कुभार्यवत तद्वित्तीर बुधस्येह किम असत्कर्म वीर भवेत। नारद मुनि ने एक ऐसे मनुष्य की भी बात कही थी जो वेश्या का पति है। हरियश्व ने इस प्रकार समझा, यदि कोई पुरुष किसी वेश्या का पति बनता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता खो देता है। इस तरह यदि जीव की बुद्धि दूषित है तो वह अपने भौतिकवादिता का जीवन को बढ़ा देता है। भौतिक प्रकृति से निराश होकर उसे बुद्धि की गतियों का अनुसरण करना पड़ता है जो सुख तथा दुख की विविध स्थितियों को लाती है। यदि कोई ऐसी स्थितियों में सकाम कर्म करता है तो उसे क्या लाभ होगा। यदि गोपाल कृष्ण महाराज यहाँ जितने भी विवाहित नहीं है और अभी सोचते भी नहीं, इनको सबको यदि ब्रह्मचारी ही नहीं बल्कि सन्यासी बना दे तो जगत में कितनी उथल पुथल हो जाती। सबको कहा जाए, नारद मुनि का आर्ग्यूमेंट है, हाँ? तो क्या हालत होनी चाहिए। इतना सॉलिड आर्ग्यूमेंट है नारद मुनि का कि दूषित बुद्धि है जो वेश्या की तरह दूषित बुद्धि भौतिकता का दूषण होता है। स्वयं आत्मा के लिए भौतिकता जो सत्व रज और तमोगुण द्वारा विस्तारित होती है वो आत्मा को सर्वप्रथम अहंकार के द्वारा तामसिक वृत्ति या अपनी अज्ञानता प्रकट करने में ही बनी रहती है। हम समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं ज्ञानी, लेकिन ये अहंकार हमें अज्ञानी ठहराता है। वास्तविकता यह है, उल्टा ही धंधा है। ओम अज्ञान अति निरंधस्य ज्ञान जनश। भक्ति तब हो सकती है जब हम अपनी ये अहंकार वाली अज्ञानता को सर्वप्रथम जाहिर करते हैं कि नहीं ये सच है, नहीं तो गुरु की आवश्यकता भी नहीं रखते। जो अज्ञान में पैदा हुए अपने आप को सब कुछ मानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं अपना गुरु अपना निर्णय करूंगा, लेकिन उसको पता नहीं कि भौतिक गुणों के संसर्ग में आकर उसकी आत्मा की चेतना पोल्यूट हो गई है, उसका क्या और इन गुणों में रहकर वो चाहे कितना परोपकारी काम भी क्यों ना करे तो उसे क्या लाभ। दुष्कर्म तो करता ही रहेगा। जो जन्म जन्मांतर हमें शरीर का बंधन देने वाला ये भौतिकता का साम्राज्य जिसे संस्कृति के रूप में यानी कि संसार के रूप में बताया जाता है, ये अपने हाथ में रहने वाला नहीं है। जब अपने हाथ में ही कितने छिद्र हैं, कुछ पकड़ने जाओ उसे पहले निकलना शुरू हो जाता है, हम पकड़ नहीं पाते। ऐसा संसार है, संसार को कोई पकड़ सकता है, लेकिन संसार किसकी अध्यक्षता में काम कर रहा है? परम सत्य भगवान, उनका सत्य जाने बिना अज्ञानता में अपने आप को जानकार मानता है और सब कुछ करने के लिए ये संसार चलाने में उसका सुचारू रूप संचालन करने में झूठे वायदे करने वाले पॉलिटिशियन से लेकर साइंटिस्ट के सब दुष्कृति में बताया गया। क्योंकि जब तक गुणों का संसर्ग है, गुणों का संसर्ग उसे भ्रमणा देता है। वस्तु भी गुणों से बनी है और स्वयं का शरीर भी गुणों से बना है, और शरीर में जो चेतना आत्मा की है वो तो परमात्मा होने के वजह से हमें चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। परमात्मा होने से आत्मा स्वयं अपने आप में टिकता नहीं, उनको टिकाने वाले परमात्मा है, क्योंकि पैदा करने वाले भी परमात्मा है, या आत्मा को बुलावा देने वाले भी परमात्मा है, क्योंकि आत्मा जब इच्छा करता है तो उसमें स्वतंत्र शक्ति भी नहीं है कि वो अपने आप को भूल सके। लेकिन भगवान से विरुद्ध इच्छा करने के कारण भगवान ने समझा ये मुझे नहीं चाहता है तो चलो ये भौतिक प्रकृति बनाऊं उसके लिए तो इक्षति स इमान लोकान असृजत। उन्होंने सिर्फ देखकर दिव्य दृष्टि ये भौतिक प्रकृति पर डाली जो एक किण्व की तरह काम करती है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट उद्दीपन, वो स्वतंत्र रूप से उद्दीपन कभी भौतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उसकी उपस्थिति के कारण बहुत सारी प्रक्रिया होती है। यदि देखने मात्र से, भगवान की दिव्य दृष्टि से देखने मात्र से ये भौतिक सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, संहार भी होता है। उसी काल की गणना कहां से होती है? यस्वै स्वनिश्वसति कालवथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महान यस्य कला विशेष गोविंदमादि पुरुषोत्तमहं जानामि। महाविष्णु या भगवान श्री कृष्ण की कला, आदि पुरुष की कला है, और जिसके निश्वास और उच्छ्वास जिसे कहते हैं, श्वास के दो प्रकार है ना, पहले लिया जाता है बाद में निकाला जाता है। तब भगवान ने तो दृष्टिपात करके योग निंद्रा में चले गए और उसके श्वास और उच्छ्वास में ये सृष्टि का पुनः आगमन और पुनः अदृश्य होना चालू हो गया। और सब जैसे अपने नाक में छोटी छोटी रचकने होती हैं, वो श्वास लेते समय अंदर जाती है और उच्छ्वास के समय बाहर आती है। ये भगवान महाविष्णु के श्वास और उच्छ्वास के समय का जो बीच वाला जो समय है उसे काल कहते हैं। काल का अवलंबन ये महाविष्णु के श्वास और उच्छ्वास पर आधारित है। और जीवन की लोम विलजा जगदंड नाथा, ये श्वास और उच्छ्वास सिर्फ नाकों से नहीं होती है। भगवान के दिव्य शरीर के रोम रोम से भी असंख्य ब्रह्मांड प्रकटते हैं और पुनः इसी तरह अपने में समाये जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जीवात्मा तीन गुणों के संसर्ग में आता है और भौतिकता का जीवन चालू करता है, लेकिन उसकी बुद्धि ठिकाने के लिए बारंबार जन्म होते ही उसे घर्षण करने की आवश्यकता रहती है, और घर्षण के दरमियान वो हताश होता है और पुनः उसको जबरदस्ती से मृत्यु की शरण लेनी पड़ती है। उसकी इच्छा पूर्ण हुई न हुई, वो ही सोचता मन में मन में जो जो धारणा करके जाता है वही इच्छा के अनुरूप वो दूसरा शरीर प्राप्त करता है। शरीर की रचना तीन गुणों और भौतिक शक्ति के द्वारा हुई, लेकिन आत्मा की रचना तो भगवान का अंश होने के कारण सच्चिदानंद है और उसमें जब परमात्मा संचार करते हैं तब तीन शक्तियों को अनुभव करता है। वो अनुभव सच्चिदानंद विग्रह और उसकी जो सांदिनी सामरित और लादिनी शक्ति का थोड़ा अंश परमात्मा देते हैं, जिसके द्वारा सारी शक्तियों का संचार होता है। लेकिन जैसे अहंकार के पर्दे में से निकलता है ये शक्तियां निकलती है तो वो भौतिकता को ही सच मान बैठती है। अहंकार द्वारा वो ये समझता है क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये भौतिक शक्ति है, इसलिए भौतिक शक्ति का वो बना हुआ मानता है, अपने आप को शरीर मानता है। यहां एक श्लोक में भगवान जो कहते हैं कि कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मसु, कारण यानी कि हमारा अच्छी योनि प्राप्त करना या बुरी योनि प्राप्त करना, जीवन में जो जन्म मरण के चक्कर जो संसार का नीति नियम बना है वो तो गुणों के संघ के कारण है। क्यों? वही जीवात्मा पुरुष यानी कि वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हुआ एंजॉयर, अपने को पुरुष मानना, स्त्रियां स्त्री शरीर में भी पुरुष होती है और पुरुष भी भगवान की शक्ति के होने के कारण स्त्री होता है वो, लेकिन वो आध्यात्मिक स्वरूप है शक्ति का, तो वो स्त्री के स्वरूप में हर एक जीव जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, इसमें ये नहीं लिखा है कि पुरुषेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास या स्त्री स्त्रीहन, नहीं नहीं जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास है, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में, लेकिन जीव की कोई का कोई लिंग नहीं होता, यदि लिंग हो तो भगवान की प्रकृति है इसलिए स्त्री स्वरूप है। कहने का मतलब है कि ये आध्यात्मिक चेतना जैसे अहंकार के पर्दे में पसार होती तो ये जो जीव है अपने आप को कर्ता भी मान लेता है, मैंने किया, लेकिन ये तो गुणों का संग है। तो प्रकृति पुरुष है प्रकृति स्थोपी भुंक्ति प्रकृति जान गुणान, प्रकृति द्वारा जो तीन गुण संचालित होते रहते हैं, किसी भी दुनिया में जाओ सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं तीन गुण है, सब जगह तीन गुणों का ही बोलबाला है। चाहे मंगल में जाओ या शुक्र पर जाओ या कोई अन्य गैलेक्सी में पहुंच जाओ या कहीं भी जाओ, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा ही जीव का संचालन होता है, स्पष्ट है। प्रकृति एक क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः, लेकिन अहंकारं विमूढात्मा कर्तारम् इति मन्यते। तो ये प्रकृति के गुण वो अहंकार द्वारा प्रभावित कर वो आध्यात्मिक चेतना को भौतिक चेतना बना देता है, इसलिए भौतिक चेतना अपनी इंद्रियों में जब वहन होती है तो भौतिक चेतना के द्वारा यदि कुछ भी वो अपने संसर्ग में लाता है, चाहे आंख द्वारा संसर्ग में लाता है चाहे नाक द्वारा चाहे कान द्वारा चाहे स्पर्श द्वारा चाहे जीभ द्वारा स्वाद द्वारा, ये पांचे पांच इंद्रियां भौतिक गुणों के संसर्ग में आती है, जिसमें असली चेतना तो आध्यात्मिक होते हैं लेकिन अहंकार की वजह से वो भौतिक बनती है। इसीलिए भुंते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति के द्वारा पैदा हुए ये तीन गुणों ही संपर्क में आते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इनके मिश्रणों द्वारा ही अलग अलग मिश्रण है। कभी ये पानी भी गर्म लगता है, कभी ठंडा भी लगता है, लेकिन मेरी भौतिक चेतना भौतिक तत्व के साथ संपर्क में आई है तो हमें क्या मिला? हमारी तो मन में मन नहीं रह जाती है, यानी बारंबार हमें बदलना पड़ता है। अभी ठंडी है, कोसा पानी दिया है, गर्मी आएगी तो रेफ्रिजरेटर वाला पानी आ जाएगा। हम कब तक ये तोड़ मोड़ करते रहेंगे? जब तक प्रकृति के गुण अपने पर सवार है तब तक। तपश्चर्या द्वारा इतनी कड़ी ठंडी में हिमालय में पानी में रहकर भी तप करने वाले हैं। ये गुणों पर अपना नियंत्रण करना चाहते हैं। अंततोगत्व जब तक ये शरीर है, कम से कम सत्व गुण में आने की आवश्यकता है। तो सत्व गुण का उदय होने से हमें आनंद की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति होती है। आनंद नहीं, सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग में सत्व गुण तो बहुत कम बताया है, ज्यादातर तमोगुण और रजोगुण ही पड़ा है, और रजोगुण भी सफल न होने के कारण तमोगुण में ही पलटता है ना। तो इसलिए हम ज्यादातर परेशान हैं। तो गुणों का प्रभाव देखो आध्यात्मिक चेतना को दूषित करता है। तो उसी तरह जब अहंकार एक दूषण पड़ा है अपने में, तो क्या बुद्धि और मन दूषित नहीं होंगे? ये दूषित बुद्धि को वेश्या के रूप में नारद मुनि कहते हैं, गुणों के प्रभाव से छूटो तो दूषित बुद्धि को शुद्ध करने की आवश्यकता है। दूषित बुद्धि कैसे? यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधिक कलत्रादिषु इज्य भौमधी यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न कर ही चित जनेशु अभिकेशु स एव गोकर। गो याने गैया, खर याने गधा, ये पशु है। पशु की बुद्धि के समान मनुष्य बुद्धि बनी रहती है। कब? तो कहते हैं जिनकी बुद्धि त्रिधातु कफ पित्त और वायु वाले शरीर पर ही बनी रही है, या ये शरीर के द्वारा उपार्जित जो विस्तार है कलत्र आदिशु, यानी कलत्र यानी पत्नी पुत्र परिवार मित्र मंडल समाज और देश, इज्य भूमधि, भौम यानी के भूमि, इज्य पूजनीय है। ये शरीर इस भूमि में पैदा हुआ है, इसीलिए मैं इस भूमि की रक्षा के लिए मर फिटूंगा। सही ना? घर में झगड़े कैसे होते हैं, बंटवारा कैसे होता है? मैं भी यहां पैदा हुआ, मेरा भी अधिकार है। तो इज भौमधि यानी कि राष्ट्रीयता भी आ जाती है, ये त्रिगुणात्मक भाव में लपेट आती है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता में भी कहते हैं, कभी कभी ऐसी नाराबाजी करते हैं कि जो हमें शास्त्र में नहीं मिलता। देशभक्ति सच्ची भक्ति है। अरे भक्ति का ठिकाना कहां? अभी देशभक्त कौन है? अखबार में पता चल जाएगा, हर रोज आता है, सभी देशभक्त हैं क्या? रामचंद्र ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। भगवान कहते हैं कि जो वास्तव में धर्म का पालन करता है भगवान को ऊंचे, ये तो निरपेक्ष रखकर सारा राष्ट्र का संचालन करने की कोशिश करते हैं, करते नहीं कोशिश करते हैं, क्योंकि ये विधान बनाया है। धर्म हमेशा निरपेक्ष होता है, नहीं कि सरकार निरपेक्ष होकर धर्म नहीं चलाना चाहती, निरपेक्ष यानी कि जिन किसी पर किसी की अपेक्षा नहीं है। धर्म पर तो हमें निर्भर रहना होता है, क्यों वो सत्य का प्रतिपादन करता है, नहीं तो राष्ट्रीयता बदलती क्यों है? आजाद हुए फिर भी हम पराधीन हैं, इकोनॉमी हमें कितनी पराधीनता बनाती है, जबरदस्ती के चाइना के साथ कंपटीशन में लड़ाने के लिए अमेरिका ने यह नुस्खा किया, चलो यहां भी आउटसोर्सिंग कर रहे हम इंडियन। लेकिन ये सब तीन गुणों का प्रभाव है जो पलटी मारेगा। अमेरिका ने काफी पलटी मारी है और सबको पलटी मराना चाहता है अभी भी। कहते हैं मियां बीमार हुआ फिर भी तंगड़ी ऊंची रखता है, ऐसी हालत है। अमेरिका को जो जितना फटकार पड़ा है दुनिया में किसी को नहीं पड़ा, फिर भी वो सारे संसार को अपने निजी हुकूमत के नीचे लाना चाहता है। मियां खूब बीमार है खुद, अमेरिका की बीमारी का किसी को पता नहीं है, ऊपर से छिपा देते हैं, लेकिन इतने सड़ी हुई बीमारी ये लोग खूब घबराते हैं। कौन घबराता है? किसको डर होता है पता है? जो भवबंधन में पड़ा है, प फ ब भ म, जो ज्यादा परिश्रम करता है, परिश्रम का फल प्राप्त करता है तो बंधन में फंसता है, बंधन वाले भयभीत होते हैं, और भय का परिणाम मृत्यु, गया काम से, सही। तो ये गुणों का प्रभाव है। वहां रजोगुणी कितने हैं, सात्विकता का तो कोई ठिकाना नहीं, कभी कभी दिखाई देती है। ये रशिया में अभी जो बवाल मचा है, सरकार की आंख खुल गई कि अब तो हमारा नाक कटेगा, इसीलिए पड़ी है। लेकिन जब यही रशियन भक्त जेल में थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, 1986 गोर्बाचोव को अमेरिका ने दाटी मारकर छुड़वाया है, भारत सरकार ने नहीं छुड़वाया है। अभी भारत सरकार की आंख खुली है और सब जगह अब सराहना हो रही है, और प्रभुपाद जी की गीता की सराहना हो रही है। परसों हम इंदौर में थे तो वहां की दैनिक पत्रिका में ये लेख आया, तंत्री लेख में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हम जाहिर करते कि सारा देश आपके पीछे, ऐसा लिखा। तो इतना मत, ये जागृति श्री प्रभुपाद जी की भगवद गीता ने, ये श्रेय तो श्री प्रभुपाद जी को जाता है, हमारे में कोई ताकत नहीं, देश में भी ऐसी कोई ताकत नहीं, लेकिन हम वास्तविकता जाहिर करते हैं कि ये चीज काफी स्पष्ट करने में भक्ति विज्ञान स्वामी हमारे वहां के जीबीसी और हम, क्योंकि उस समय 2000 के साल में गोपाल कृष्ण महाराज को निमंत्रण मिला था, वो मुझे कह रहे हैं कि हम नहीं जा पाएंगे, आप ये यूनाइटेड नेशंस ने ये बड़ा सेमिनार रखा है, आप चले जाओ, हम प्रतिनिधित्व करने के। देखिए उससे पहले जुलाई में, वो अगस्त में होने वाला था, जुलाई में ऋषिकेश में एक रिहर्सल वाला कॉन्फ्रेंस रखा, रिहर्सल, इसमें सारे हिंदू धर्मार्थ जो वहां प्रतिनिधित्व करने जाएंगे एक साथ बोलेंगे, ऐसा दावा कर रहा था। तो उन लोगों को कुछ वहां की रीत भारतीयां पता नहीं क्या है, तो सबके लिए इनको कहा गया कि हम आपको जो निर्देश करेंगे उसके अनुसार हम सारे हिंदू धर्म का रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम और भक्ति विज्ञान स्वामी दोनों ही अपनी ओर से थे। सब नेताओं को बोलने को कहा और सब अपनी अपनी चला के चले गए। किसी ने भगवान का कोई इनकी या धर्म की रक्षा के लिए भगवद गीता का उल्लेख भी नहीं किया। और अंतिम दिन पर भी वो लोग की कोई ये थी नहीं कि भक्ति विज्ञान महाराज को जो संदेश लेकर आए हैं और एजेंडा में इनका नाम है, फिर भी इनको बोलने की मौका नहीं देते। तो हम गए सर और हमारे कई परिचित थे, तो सबको हमने कहा कि भैया हम तो खास इतने दूर से भक्ति विज्ञान स्वामी को ले आए हैं, इनको बोलने के लिए 5 मिनट भी नहीं दे सकते। सबने तो अपनी अपनी संस्था की ध्वजा फरका के चले गए हैं, एकजुटता का विषय तो हमें मिला ही नहीं, इनको बोलने दो। तो मान गए, 5 मिनट दिया। अंत में भक्ति विज्ञान स्वामी ने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए तो बलिदान की आवश्यकता है, सही। हमने रशिया में आप लोगों के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने जेल भोगी, 13-13 साल तक हमने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बिताए हैं। वहां जेल में बच्चे भी पैदा हुए हैं, क्योंकि कई माताएं भी थी इनके पति के साथ जेल में, उनको भी धकेल दिया। क्यों, कारण क्या था? भगवान का नाम का जप करे या भगवद गीता रखे, तो वो उस समय केजीबी मना करती थी और पाबंदी लाके और हल्ला मचा कर भक्तों को पकड़ पकड़ के ले जाती, सभी अंडरग्राउंड काम था। तो कहते थे कि आप लोग कहां थे उस समय, हमें तो कोई मदद करने वाला था ही नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि इस हालत में भी हमने 1986 में गोर्बाचोव ने जब हमने हमको रिहा किया, उससे पहले हमने 1 करोड़ भगवद गीता बेची है और सब तालियां बजा रहे। उस समय वो लोग अभी बाहर आए, लेकिन आप लोगों ने मदद नहीं की, हमने तो भारत सरकार ने मदद की थी उस समय। बोला कहां थे आप लोग, धर्म की रक्षा आपको नहीं दिखाई दी? सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। लेकिन जब भगवद गीता का 1 करोड़ का नंबर लग गया तो सबने तालियां बजाई। हमारे लोग जगते नहीं, जगाने के लिए भगवद गीता काफी है, सक्षम है। क्योंकि वैसे तो श्लोक भी बोल जाएंगे, साधु महात्मा बहुत सारी चीजें जानते हैं, वेद पारायण करते हैं, ये करते हैं, और बड़े बड़े लेक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान का अनादर भी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं, भक्ति ही भगवान की शरणागति का एकमात्र साधन और आदर करने का रास्ता है। ज्ञान भगवान का आदर नहीं करता, अनादर करता है, वो तो निर्गुण निराकार तत्व की बातें करता है। क्योंकि ये गुणों के संग से यदि छुटा भी हो ज्ञानी, फिर भी भक्ति का अभाव होने के कारण वो भगवान का द्वेषी कहलाता है, इसीलिए भक्ति के बारे में कुछ नहीं बोल पाएगा। भगवद गीता का आशय भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये कौन छूट सकता है बहुत सारे धर्मों की भावना से? अलग अलग धर्म अपने अपने बना के बैठ गए, लेकिन इनकी एकत्रता के लिए ये गुणों का संग से कौन छूट सकता है? भक्त छूट सकता है, ज्ञानी नहीं छूट सकता, न तो ध्यानी भी छूट सकते हैं गुणों के संग से। बहुत मुश्किल है। कोई यदि गुणों के संग से छूटकर मुक्त हुआ है, मुक्ति पाया है, फिर भी भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो भागवत क्या कहता है? अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना तई अस्त भावा अविशुद्ध बुद्धय, अविशुद्ध बुद्धय। उसकी बुद्धि प्रोस्टिट्यूट जैसी है, अविशुद्ध बुद्धय, बुद्धि शुद्ध नहीं। आरुह्य पृच्छेन परम पदं तथा पतंती अध अनादत युष्मदन ग्रह। भगवान की अंगरी यानी कि चरण कमल का अनादर कर रहा है, इसलिए वो मुक्त अवस्था से भी गिर कर उसे जबरदस्ती से किसी की सेवा अनजाने में भी करने की जबरदस्ती पड़ती है। यदि किसकी सेवा करना जानता है, किसकी सेवा करनी चाहिए वो यदि जानता है तो वो गिरेगा नहीं। इसलिए वहां कहे कि सेवा परमो धर्म, परमस्य सेवा ही धर्म। सेवा अपने आप में परम नहीं कहलाती, भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान परम है इसलिए इनकी सेवा परम है। तो ये गुणों का प्रभाव से जो छूटता है वो सही ढंग से समझ सकता है और भगवान के चरण कमल में नतमस्तक होकर अपना सारा जीवन आत्मनिवेदन में डालता है। ये शरणागत, यहां तो ये दुष्ट बुद्धि के साथ रहता है। पुरंजन की कथा भी आती है। पुरंजन हर एक जीव को कहा कि ये नव द्वारे पूरे देही, नव छिद्रों जिस शरीर में है, नव दरवाजे, ये दरवाजे वाले शरीर में जो देही है, देह में रहने वाला, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो देह और देहिना दो चीज है, देह अलग है, देही ना अलग है। वो रहने वाला जब पिता के वीर्य द्वारा माता का बीज फलीकरण होता है तो जीवात्मा उस पर सवार होता, वो पुरंजन एक बड़े शहर में, बड़े मैदान में, बड़ी सुंदर रचनात्मक भावना वाले वातावरण में आता है और वहां एक बहुत सुंदर आकर्षक स्त्री दिखता है और ये स्त्री के मोह में फंस जाता है। तो वहां भी बताया है कि ये सुंदर आकर्षक स्त्री एक छोटे से फलित बीज में वो बुद्धि है। वहां स्पष्टता की है, ये बुद्धि के साथ जीवात्मा सर्वप्रथम शादी कर लेता और बाद में अपनी जंजाल एक छोटे से कोष में भी बना लेता है। लेकिन वो अपना विस्तार करना चाहता है तो एक कोष में से दो कोष, दो से चार, चार से सोलह इत्यादि असंख्य कोषों वाला शरीर बनाता है। लेकिन जीव तो एक ही है और दूसरे जीवों को इनवाइट करता है, हर एक कोष जीव, लेकिन ये जीव में जो सजाग बुद्धि वाला जो कोश है वो हम है और ये दुष्ट बुद्धि के साथ ब्याह किया है। तो यही कहानी आप अजामिल के प्रसंग में भी देख सकोगे। अजामिल की कहानी भी नारद मुनि कहते हैं, इसलिए इस श्लोक में आया कि अन्य जगह भी बुद्धि को वेश्या के रूप में बताया है और हरियाश्व ने इनमें इस प्रकार समझा है। हरियाश्व 10,000 देते दक्ष के, इनको प्रजापति बनने का आदेश दे दिया, सर्वप्रथम प्रजापति बनना है तो तपश्चर्या करने जाओ, शुद्धिकरण करो, ये दुष्ट बुद्धि से छुटो। हाँ, ये भारी जिम्मेदारी वाला काम है। यदि कोई गलती करते हैं, ब्रह्मा जी ने भी एक बार गलती करी, तो ये गलतियां प्रजा बनाने का अधिकारी नहीं बनता, बनाता ही। ब्रह्मा जी ने आत्मविलोपन किया है, देह छोड़ा है, और बुद्धि को ठीक करके जब उनकी तैयारी हुई तो भगवान ने फिर से मौका दिया है। ये तीसरे स्कंध में आता है। ये भौतिक बुद्धि, भौतिकता ही तो प्रदूषण करती है, तो प्रदूषण करने वाले को दुष्ट कहते हैं। जिसका मन दूषित हुआ है ऐसी स्त्री वेश्या कहलाती है। लेकिन हरेक के खोपड़ी में ये दूषित बुद्धि पड़ी है, उसका क्या है? उनको सफाई करने के बजाय हम स्त्रियों को ताड़ते हैं किसी न किसी बहाने, वो भी तो ठीक नहीं। जिनकी बुद्धि यह तीर्थ बुद्धि सलीले न कर ही ची, तीर्थ बुद्धि यानी कि पवित्र हुई, तीर्थ स्थान में हम जाते हैं नहाने धोने के लिए और अपना मेल उतार के वहां से आते हैं, लेकिन भगवान के बारे में पूर्ण पवित्रता वाला सत्संग नहीं करते हैं वहां जाकर, जिससे हमें हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। जिस आत्मा की तो बत्तीस ये तीन गुणात्मक अहंकार से भी पिघल कर विशुद्ध रूप में बाहर आती है तो वो तीर्थ बुद्धि कहलाती है। और साधु महात्मा इस बुद्धि रखते हैं, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थ करने वाला। तीर्थंकरवन कुर्वन्ति तीर्थानि, अरे वो तीर्थ को भी पवित्र रखने वाला साधु वहां बसता है, तब वो तीर्थ की महत्ता होती है। तो तीर्थाटन करने जाए, वृंदावन जाए, तो अवश्य हमें जिसकी बुद्धि पवित्र हुई है इनके साथ ही संग करना, नहीं तो वहां भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, लोई बाजार में जाओ तो तीर्थ तो बुद्धि तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, कहीं जाओ ये करो, हम किसी का अनादर नहीं करते, सबके साथ धाम अपराध से बचे, तो जो अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना चाहता वही तो करेगा। तो तीर्थ बुद्धि, या तीर्थ बुद्धि सलीले न कर ही चित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखर। जब तक मनुष्य के बुद्धि ये भौतिकता का आवरण हटाकर पवित्र नहीं हुई है, तब तक वो गाय और गधे की बराबर समझा जाता। गाय और गधा, पशु में कितनी बुद्धि हो, पैर तक की ही जो बुद्धि रखता है वो पशु कहलाता है। सुखदेव गोस्वामी तो बहुत ताड़ करते हैं, पशुओं की न मेहनती। पशु भी वीर्य का त्याग करते हैं, तो आदमी भी इन पशुओं जैसा वीर्य का त्याग करता है तो वो आदमी है क्या? नहीं। इसलिए नारद मुनि सबको ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, और दक्ष प्रजा पैदा करना चाहता है इंडिस्क्रिमिनेटली। वो प्रजापति है, लेकिन इतनी प्रजा पैदा करो, इतनी प्रजा पैदा करो कि मेरा नाम मशहूर हो जाए, एक्सपर्ट है, इसीलिए दक्ष कहा जाता है। इसलिए हमने कहा कि यदि जो जो अपरिणित हैं इनको कहो चलो ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, गोपाल कृष्ण महाराज यदि कहें तो धमाका बन जाएगा, लग जाएगा बराबर। नारद मुनि तो कहते हैं, तो जिनकी बुद्धि वेश्या बुद्धि है यानी कि भौतिक गुणों के संपर्क में आकर दूषित हो गई है, हाँ? ऐसे माता पिता क्या कहेंगे? दक्ष जैसे श्राप ही तो देंगे, और कुछ करेंगे? अल्लाह मच जाएगा, है ना? लेकिन देखो काफी संख्या में ब्रह्मचारी जी का है, बने रहो, जीते रहो, हरि बोल करते रहो। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में तो सभी सफेद पहनने लगे हैं, यानी कि हम गृहस्थी रहेंगे तो देखना क्या जंजाल में फंसोगे। ये संसार अपने हाथ में रहने वाला नहीं है, हमें तो गृहस्थी को भी सिखाना पड़ता है, और झगड़ा करो और झगड़ा करो, तब मजा आएगी हमें देखने। कभी कभी हमें महाराज जी हमारे यहाँ शादी है, आओ, कोई शादी में महाराज जीओं का काम नहीं। नहीं, जब परेशानी आएगी तब हम आएंगे। सही ना? हम तो जानते हैं कि आने वाली है, तो इन लोगों के साथ भी संबंध रखते हैं। लेकिन ये गुणों का प्रभाव देखो क्या नहीं करवाता है। ये प्रकृति इतनी जबरदस्त भगवान ने बनाई है, अपनी ही कहते हैं ये मेरी प्रकृति है और दिव्य है। लेकिन इसमें आध्यात्म को जो लागू होती है वो दिव्यता वो नहीं देखी, वो तो भगवान की शरण लेने से ही प्राप्त होती है। हाँ, भौतिक प्रकृति से छूटना महामुश्किल है। दुरत्यय, दुरत्यय देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की शरण लेने के लिए ही एक आवश्यकता है। ओ, इतने थोड़े दुख पड़ गए तो हम थोड़े दुख का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अन्य दुखों के बारे में हमारी जो अहंकार अज्ञानता जो पड़ी है वो जाहिर नहीं करती, इसलिए थोड़े दुख में भी हम आकर्षित हो जाते, चलो भगवान के पास शांति तो मिलेगी। लेकिन शांति परेशान करती है, जहां हरि कीर्तन नहीं होता वहां शांति देखो कोई मर गया हो ऐसी शांति। जब हरि कीर्तन होता है तो शांति से भी ऊपर उठाकर भगवान के सानिध्य में पहुंचाने वाली आनंदमयी आनंदमयी प्रकृति में हम आते हैं। वो लादिनी शक्ति रानी जिनकी अधिष्ठात्री है इनके पास पहुंच जाते हैं। नहीं तो शांति परेशान करने वाली है। डेड मर गया वो तो शांत हो ही गया, कहते शांत हो गए, यानी कि वो जब खुद शांत हो जाता है तो शांति पा चुका है, फिर भी हम कहते भगवान उसकी आत्मा को शांत दे, लेकिन आत्मा शांत नहीं है, शरीर शांत हुआ है, आत्मा शांत नहीं है, आत्मा को शांति चाहिए। यानी कि आत्मा फिर भी मन बुद्धि और अहंकार के शरीर से तो सूक्ष्म शरीर से घेरा हुआ है, इनको शांति देने वाले कौन प्रक्रिया है? हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक दूसरा प्रसंग भी पृथु महाराज के इसमें आता है। पृथु महाराज के वंश में यानी कि जब मनु भगवान और शत्रुपा से मनुष्य की संस्कृति चालू हुई तो उसमें मनु के दो बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हुआ और वही परिवार में आगे चलकर एक प्राचीन बर्हिषद राजा हो गए। प्राचीन बर्हिषद भी कर्मकांड यानी कि तीन गुणों में सत्व गुण का ज्यादा उपयोग करके लोक कल्याण के लिए इतना कर्मकांड कर रहा था, उसमें पशु होम भी देता था और नारद मुनि वहां भी पहुंच गए। देखो उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए। ये भी प्राचीन बर्हिषद के 10 बेटे थे और उन्होंने कहा कि आप जाओ प्रजापति बनो, प्रजा का विस्तार करो। तो वो कहां गए? बिंदु सरोवर पर तपश्चर्या करने के लिए। पिताजी प्रजा बाद में पैदा करेंगे, पहले तपश्चर्या करेंगे। वो बिंदु सरोवर से कौन आते थे? शिव जी आ रहे हैं। शिव जी अपने अनुचरों के साथ आते, उन्होंने देखा तुरंत पहचान गए, आप बर्हिषद के बेटे हो, आप कहां जा रहे हो? मैं जानता हूं। शिव जी कहने लगे ये सबसे बड़ा उत्तम कार्य है, लेकिन बिंदु सरोवर में मैं भी भगवान श्री कृष्ण की सराहना करने के लिए मैंने ये स्तोत्र बनाया है, आप इनका पाठ करो, इनको खुश करो। तो आपका ध्येय सफल हो जाएगा। तो शिव जी ने सारा सुनाया इनको, इन्होंने कंठस्थ कर दिया और उसके अनुसार ये ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारी इन लोगों को नहीं, जो जो मनुष्य है इनको सबको मिली है। इसलिए आदर्श गृहस्थाश्रम में सर्वप्रथम नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सातवें स्कंद में बताते हैं कि युधिष्ठिर आदर्श गृहस्थान में सर्वप्रथम भगवान की ओर से आने वाली जिम्मेदारी जो प्रजा पैदा करने के लिए है उसके लिए ही भगवान कैसे बीच में रहे, इनकी विस्मृति ना हो, इस ढंग से जीवन का कारोबार संभालना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान की जो ये विरासत मिली है तो भगवान को हमें ऑब्लिगेशन देना पड़ता है, ओब्लाइज्ड। ये नहीं कि ऑटोमेटिक जो आदमी आया है वो प्रजा पैदा करेगा ही, नहीं। जिम्मेदारी क्या है उसका पता है कि जो जो सुषुप्त जीवात्माएं हैं जिनको शरीर नहीं है, सिर्फ मन बुद्धि और अहंकार में वो भटकते रहते हैं, इन जीवात्माओं को यथा योग्य माता पिता इन जीवात्माओं का माता पिता बनने का स्थान, क्योंकि इनकी इच्छा मन बुद्धि और अहंकार में पड़ी रही तो इनको ये इच्छा की पूर्ति के लिए तो ये प्रकृति बनाई है। तो आप भगवान की ओर से ये जिम्मेदारी ले लो, माता पिता बनो और जीवन का हेतु इनको ये मौका देकर इसकी मुक्ति देने का है। इसीलिए गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् यद्यपि न मोचेत समुते समुपेत्य मृत्यु। मृत्यु से छुटकारा नहीं देने वाले आने वाली संतानों को, तो आपको कभी मां और बाप बनने की इजाजत नहीं है, गुरु बनने की इजाजत नहीं है, स्वजन या कोई भी संबंध में इन जीवात्माओं के साथ आने का कोई मतलब नहीं। ये सब उद्धार करने के लिए यह संबंध है। हम आपके चाचा बने, आपको उपदेश देते हैं। हमारा एक ही विषय होता है कि भाई कैसे आपकी प्रगति हो उद्धार के दृष्टि से। हाँ, ये संबंध ठीक है, ले घर में किसी की शादी होती है तो बच्चे के पास में मेरे चाचू की शादी में अवश्य आना। लेकिन क्यों, इसके पीछे कोई महत्ता नहीं, न तो बच्चे जानते हैं तो पिता का भी उद्धार करने की उनको जिम्मेदारी मिली, तब तो पुत्र कहलाएगा नहीं तो मूत्र कहलाएगा। तो ये सब अरस परस का संबंध भगवान को केंद्र में रखकर बनाया गया है। उसकी चेतना की जागृति सिर्फ हरिनाम द्वारा आती है। हरिनाम से अहंकार भी पिघल सकता है, हरिनाम से ये तीनों गुणों का प्रभाव भी छूट सकता है। इसीलिए हमारी सारी भौतिक क्रियाएं भगवान के संबंध में यदि करते हैं तो ये आध्यात्मिक बनती है, भौतिक गुणों के प्रभाव से छूट जाती है। ये भगवान ने सीधा भक्ति योग में सिखाया है। मांच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन ससेवते सगुणान सत्यम इत्येतान ब्रह्म भूया है कल्पते। ये अव्यभिचारिणी भक्ति, बुद्धि व्यभिचारी हो या वेश्या वाली हो तो ये व्यभिचार कर रही है। वी अभी आचार, विशिष्ट रूप से हद से ज्यादा व्यवहार करना, यानी कि विरुद्ध, वी यानी विरुद्ध, और वो भी पागलपन के। तो ऐसे आचार, भ्रष्ट आचार प्रमत्त विकर्म कहलाता है। नूनम प्रमत्त विकुरुते विकर्म जडेंद्रिय प्रीत्रणे आपनोति। ये कौन डिक्टेट करवाता है ये विरुद्ध आचार? ये भौतिक बुद्धि वेश्या जिसकी शायद पहली ही शादी हो गई है। पैदा होते हैं यानी कि बुद्धि के साथ शादी करते आते हैं, ऐसी दुष्ट बुद्धि। तो उससे छुटने के लिए जो हरि नाम करता है उसको नारद मुनि सीधा फावड़े को फावड़ा कहने की दृष्टि रखते हैं और उद्धार करने हैं। इन 10,000 बेटे सन्यासी बन गए। दक्ष को कितना धोखा पड़ा होगा, मैंने इतनी मेहनत की, इसका फल ये, कौन है ये मेरा सारा प्लान चौपट करने वाला? उसको श्राप दे दूं। बढ़िया है, हम भी यहां ज्यादा टिकते नहीं, इसलिए कि बाद में कोई पूछने आए या हमारा पीछा पकड़े महाराज जी। तो कह देते हैं और चले जाते सही, पर फिर आप पकड़ के ले आते, कोई कोई हिसाब देना हो ना, इसलिए। तो किसी को कोई प्रश्न है? सर्वप्रथम अहंकार तमोगुण से हमें आवृत कर लेता है आत्मा को। तमोगुण के स्वामी कौन है? शिव जी। लिंग योनिता का जाता इमा महेश्वरी प्रजा। शुरुआत में जब हमें हमारी चेतना दूषित हुई तो उसको जकड़ में रखने वाले कौन हैं? शिवजी अहंकार के स्वामी हैं। लेकिन अहंकार को पिघलाते हैं। कैसे पिघलाते हैं? माला पकड़ते हैं, सही ना? तो वो तामसिक तमोगुण के अवतार इसीलिए बने हैं। भगवान विष्णु तमोगुण स्वीकार जब करते हैं तो जैसे दूध से दही बन जाता है, ऐसे विकार व्याप्त होकर वो स्थान जो दही दूध ही है लेकिन दूध का काम नहीं करेगा, दही में से दूध वापस नहीं बन सकता। तो ये भगवान ने अपना विस्तार किसी तरह शिव तत्व में करा है जिसका अनुकरण कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके उदाहरण द्वारा हम इनकी शिक्षा द्वारा सीख सकते हैं कि कैसे वो तमोगुण से भी प्रभावित न रहने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सदा करते रहे छुटने का। और सारे परिवार को भी भगत बनाया है उन्होंने, माता के हाथ में भी है माला, गणेश जी के हाथ में भी माला है, कार्तिकेय के हाथ में भी माला है, कि सब ये माला ही रखने से खोपड़ी ठिकाने रहती है। जिसके हाथ में माला नहीं है देखना भाई, सत्वगुण में आने के लिए क्या आवश्यकता होनी चाहिए? 16वां अध्याय पढ़ा, तीन गुणों का प्रभाव किन किन चीजों में आता है, तीन प्रकार की श्रद्धा। हाँ, सात्विक की श्रद्धा कैसी होती है, क्या करना चाहिए? हाँ, उसी तरह सात्विक की खुराक क्या है, सात्विक की बुद्धि क्या है, सब प्रकार का लिखा है। तो अभ्यास करो, भगवान स्वयं तीन गुणों का प्रभाव क्या है वो बता देते हैं। हाँ, तो आप सत्वगुण में स्थिर रहने के क्या आप लसुन प्याज अंडा मछली चाय शराब सब कुछ लेते रहोगे जो तामसिक कहलाती है? तो तमोगुण के प्रभाव से छूटने के लिए हमें चार नियमों का पालन करना चाहिए। रजोगुण के प्रभाव से छूटने के लिए भी चार गुणों का, तो कम से कम सात्विकता का उदय होगा। ब्रह्मा जी स्वयं रजोगुण के अवतार हैं और फिर भी कहते हैं के सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंद आदि पुरुषम तमाम विजान। माया में सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, हमारे पे एक छोटा सा ब्रह्मांड जिसमें अपने ब्रह्मा जी की खोपड़ी चार बताइए, लेकिन अन्य ब्रह्मांडों में बड़े बड़ी खोपड़ियों वाले हैं, बहुत सारी खोपड़ियां वाले हैं। फिर भी वहां माया सत्वगुण रजोगुण तमगुणों से ही काम करती है। त्रैगुण्य तद विषय वेद विधायमान, सारे विषय हर एक ब्रह्मांड में तीन गुणों द्वारा ही संपादित होता है। सत्वावलंबी पर सत्व, मैं ब्रह्मा सत्व का अवलंबन करता हूं, तो क्या आप नहीं करोगे सत्व का अवलंबन? सत्व का अवलंबन करने के लिए 16वां अध्याय स्टडी नहीं करोगे? भगवान ने क्या बाकी रखा है, क्या चलो, प्रभुपाद जी ने चार नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना करने को कहा, सही? चार नियमों का पालन वो भी दृढ़ता से हम नहीं करेंगे। आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये एकादशी में ये खाया जाता है ये नहीं खाया जाता है, कोई देखेगा ये भी चलता है, अरे इसको में तो सब कुछ चलता है। देखो मुझे क्लास खत्म करना है, एग्जैक्टली मेरा फोन बजा, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। और कोई प्रश्न है? यस, छोटा सा भी बड़ा हो सकता है। ये ब्रह्मरंध्र होता है ना, वो तो तोड़ना पड़ता है तब द्वार कहलाता है। वो तो योग की पद्धति में आता है, जीव को इतना नियंत्रित करके मूलाधार चक्र से उठाकर कुंडलिनी द्वारा आज्ञा चक्र में लाना पड़ता है। बाद में भगवान का ध्यान करने तो उल्टा ध्यान करे तो कहीं और पहुंच जाता है। सही है, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बताया कि आत्मा में स्वतंत्र शक्ति नहीं होती कि अपने आप को भूल सकते, तो फिर उसमें स्वतंत्र इच्छा करने की शक्ति कैसे?
इच्छा करने में शक्ति का उपयोग होता है क्या? नहीं, वो व्यक्ति है। व्यक्ति विभिन्नांश होने की वजह से वो छोटी सी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। हम भगवान के साथ एकाकार नहीं हो सकते, नहीं तो सनातन अवस्था कैसे कहलाए? हम क्या भगवान थे? हम भगवान नहीं, भगवान के अंश हैं। भगवद गीता स्पष्ट कहती है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत समान। भगवान के दो प्रकार के अंश बताए गए, एक स्वांश कहलाते हैं, दूसरे विभिन्न अंश कहते हैं। जो हर एक जीवात्मा है वो विभिन्नांश स्वांश नहीं है। भगवान के गुणवत्ता वाली है, लेकिन भगवान से विरोध इच्छा करिए, इसीलिए तो ये बखड़ जंतर खड़ा हो गया। बखड़ जंतर यानी ऐसा विचित्र जंत्र जिसे शरीर कहते हैं। वो जुगाड़ शब्द आता है, तो ये भी जुगाड़ है ना। ब्रह्मा जी ने जुगाड़ बनाया। तो छोटा सा जीव छोटी सी स्वतंत्रता का भी दुरुपयोग कर सकता है और भगवान के विरुद्ध। अरे ईर्ष्या करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी कैलोरी का दुरुपयोग करता रहता हो तो सुन ना, हो गई। मेहनत पड़ती है क्या ईर्ष्या करने में? लेकिन ईर्ष्या के बाद जो रगड़ होगी वो भौतिक जगत में हम सबको पता है, कोई भी अपवाद नहीं है यहां कि क्या रगड़ होती है। कृष्ण भूली गेला जीव भोगवांछा करे माया तारे पास कर झापटिया रहे। सब झापट खाते हैं, रगड़ होती है तब झापट पड़ती है ना। और
रूटीन मेंटेलिटी अपने कर्मों के फल को भोगने की इच्छा इतनी प्रबल है, इससे छुटकारा पाने के लिए शुरुआत कैसे की जाए? क्या
इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह शम दम तप शौचम शांति राजवमेव च, ये तो ब्राह्मण के कर्म स्वभावगत है। लेकिन अष्टांग योग में भी तो यही करना पड़ता है। शम दम मनो निग्रह इंद्रिय निग्रह, हाँ, बाद में आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जैसी धारणा वैसा ध्यान। कई योगियां अन्य ग्रह की सफर में ही जाना चाहते हैं, भगवान के पास नहीं पहुंचना चाहते हैं, तो वो लोग दसवां द्वार भी तोड़ना पड़ता है, नहीं तो बंद ही रहता है। जिसका दसवां द्वार बंद रहता है ना, उसकी कुंडलिनी योग सफल नहीं होता, वो अंदर अंदर खत्म हो जाता है, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। बहुत सारे को अनुभव होता है कि ये निर्मला माता जी जो कुंडलिनी योग चलाती है, तो शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी जागृत तो कर देती, लेकिन भौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति नहीं, जो सर्पाकार बताई है, तो धीरे धीरे ऊपर उठाती है, लेकिन जब धारणा ही भगवान की नहीं है तो ध्यान कहां पर लगाएंगे। इसीलिए अन्य ग्रहों की सरल सफल ये योगियों द्वारा हो सकती थी, तो कोई पितृलोक में जा सकता है, जनलोक में जा सकता है, महरलोक में जा सकता है, स्वर्गलोक तक भी जा सकता है, लेकिन यद गत्वान निवर्तन्ते तत् धामं परमं, वहां कौन जाता है। जिसकी धारणा संकल्प के साथ भगवान के चरण कमल में ही होती है, तो भगवान के धाम में जाएगा। हरे कृष्णा, कैन आई बी विथ यू इन 10 मिनट्स प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्णा। यहाँ की कथा है, जैसी धारणा, और जिसको द्वार खोलने का आता ही नहीं है दसवां, लेकिन ये योग बहुत कठिन बताया है, क्यों मन की स्थिति बहुत चंचल होती है इसीलिए। लेकिन यो जो ये तपश्चर्या द्वारा ध्यान धारणा इत्यादि, वो तो सत्ययुग में पॉसिबल था टाइम पास करने के लिए। हम कलयुग में, हमारे पास तो टाइम है ही नहीं, फिर भी टाइम पास करने के लिए पत्ते खेलते हैं, टाइम पास। हम माला नहीं करते टाइम पास के, जब माला करेंगे तो टाइम पास आउट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि जब भगवत प्राप्ति होती है तो वहां तो समय की कोई पाबंदी नहीं है, समय स्वयं गैर हाजिर रहता है, वो नित्य लीला, वो जाना ठीक है। दसवें द्वार का उपयोग क्यों करें, बंद पड़े रहने दो, क्योंकि बाकी के द्वार भी बंद करने हैं। कोई भी द्वार यदि खुला रहेगा तो मन कहीं से भी भटक जाएगा। और कोई
महाराज, आपने बताया था कि जो व्यक्ति कोई व्यक्ति इस भौतिक प्रकृति की दिव्यता को नहीं पहचान सकता जब तक उसे वो भगवान की शरण आए, तो वो दिव्यता को
दसवां अध्याय पढ़ो, भगवान की दिव्य विभूतियों भौतिकता में ही तो प्रकट हुई है। यदि भौतिक शक्ति का प्रकटीकरण नहीं होता तो यह शक्तिमान का परिचय भी कैसे हो सकता है। लेकिन भौतिक प्रकृति का प्रकटीकरण भगवान ने विराट रूप में करा है। भौतिक शक्ति की भयानकता दुर्योधन ने भी भगवान में विराट रूप दिखाकर करी है, और अर्जुन के तो छक्के ही छुड़ा दिए हैं विराट रूप धारण करके। अर्जुन का प्रस्ताव भगवान के विरुद्ध विप्लववादी नहीं था, दुर्योधन का तो था। दुर्योधन तो भगवान को डांट मारने लगता है, जादूगर मुझे डराने आए हो, ऐसा बोला था। अर्जुन विनंती कर रहा है कि केशु केशु च भावेशु, कौन कौन से भाव द्वारा मैं आपकी प्रतीति भौतिक जगत में करूं। तब भगवान तो कह देते हैं रहसो अहम अपसु कौंतेय प्रभास शिशुर्यो हो, पानी में स्वाद हूं और सारे जगत को ये उजाला देने के लिए शशि और सूर्य वो भी उनकी शक्ति में है। तो इसी तरह कितनी विभूतियां बताए, पर फिर भी विभूतियों का तो विस्तार है नहीं क्योंकि जगत बहुत विस्तृत है। इसलिए अर्जुन को कह देते हैं अर्जुन तुझे ये सब जानने के लिए क्या आवश्यकता, इतना जान ले विष्टभ्याम अहम कृष्णम एकांशे न जगतोस्थित, मेरे एक अंश मात्र से है। तो ये भौतिक प्रकृति भगवान के एक अंश मात्र से व्याप्त है, तो बाकी के अंश जो एकपाद विभूति और त्रिपाद विभूति का क्या, तीन गुनी ज्यादा भगवान की अध्यात्म सृष्टि बताई। ये तब छोटी सी परछाई, परछाई छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। माया की परछाई बड़ी किसको लगती है जो भगवान से बहुत दूर है। प्रकाश है भगवान का व्यक्तित्व है जिसमें से प्रकाश निकलता है, ये व्यक्तित्व से हम जितने दूर हैं उतने माया के चक्कर में है, यानी कि माया की परछाई बहुत लंबी चौड़ी दिखाई देगी, लेकिन ये परछाई भगवान के नजदीक आने से छुट्टी हो जाती है और चली भी जाती है। जहां कृष्ण ताही नहीं माया रधिका, तो इन तीन गुणों का प्रभाव से छुटना ही तो है। विराट रूप का कोई कोई पूजा भी नहीं करता क्योंकि भौतिक रूप है, क्योंकि भगवान का मूल रूप आध्यात्मिक बताया है। इसलिए वो श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, उनकी पूजा करने से हम अध्यात्म के गुण प्राप्त करते हैं, भौतिक गुणों से छूट जाते हैं। हमारी भक्ति में भौतिकता का अभाव होना चाहिए, लेकिन सारी जगह भौतिकता ही है। अरे भौतिकता भगवान की शक्ति है तो भगवान की सेवा में लगाते वो अभौतिक बन जाते, हम अपनी सेवा में लगाएंगे तो भौतिक बनेंगे। भगवान की सेवा में लगा ही वो आध्यात्मिक प्रकृति बनते हैं। भगवान के साथ जुड़ावा करो, ये न तेन प्रकारेण मन कृष्ण विषयेत। जय श्री प्रभुपाद की जय।